पद 40 का गुप्त इतिहास संख्या 15
दूसरा हाय भाग 2।
सिस्टर व्हाइट कई बार इस बात की ओर संकेत करती है कि यशायाह का वो अंश जिसे यीशु ने नासरत के आराधनालय में पढ़ा था न केवल उनके कार्य की घोषणा करता था बल्कि हमारे कार्य का भी प्रतिरूप प्रस्तुत करता था। उस अभिषिक्त कार्य की सिद्ध परिपूर्ति उन लोगों के द्वारा संपन्न होती है जो 144,000 के ध्वज को निर्मित करते हैं।
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने दीनों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे टूटे मन वालों को बांधने, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और बंधुओं के लिए कारागार के खुलने का प्रचार करने के लिए भेजा है। यहोवा के प्रसन्नता के वर्ष और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन का प्रचार करने के लिए, सब शोक करने वालों को शांति देने के लिए, सियोन में विलाप करने वालों के लिए ये ठहराने के लिए कि उन्हें राख के स्थान पर शोभा, विलाप के स्थान पर आनंद का तेल और उदासी की आत्मा के स्थान पर स्तुति का वस्त्र दिया जाए, ताकि वे धर्म के बांज वृक्ष यहोवा की रोपाई कहलाएं, जिससे वो महिमावान ठहरे, और वे प्राचीन उजाड़ स्थानों को फिर बसाएंगे, वे पूर्वकाल की वीरानियों को खड़ा करेंगे और वे उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी उजाड़ पड़े थे फिर से बना देंगे, और परदेशी खड़े होकर तुम्हारी भेड़ बकरियां चराएंगे और विदेशी जातियों के पुत्र तुम्हारे हल चलाने वाले और तुम्हारी दाख की बारियों की सेवा करने वाले होंगे। परंतु तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, लोग तुम्हें हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, तुम अन्य जातियों की संपत्ति खाओगे और उनकी महिमा में तुम अपने आप पर घमंड करोगे, तुम्हारी लज्जा के बदले तुम्हें दुगुना मिलेगा और अपमान के बदले वे अपने भाग पर आनंदित होंगे, इस कारण वे अपने देश में दुगुना भाग पाएंगे, उनका आनंद सदा बना रहेगा। यशाया 61:7।
पिछले लेख में हमने उस घंटे, महीने, दिन और वर्ष की पहचान करना आरंभ किया था जिनसे 391 वर्ष और 15 दिनों की समय भविष्यद्वाणी निर्मित होती है। अब समय नहीं रहा, इसलिए समय की इन चार अभिव्यक्तियों को अंतिम दिनों में प्रतीकात्मक रूप से लागू किया जाना चाहिए, जब पहली और दूसरी हाय की भविष्यदर्शी विशेषताएं तीसरी हाय में पुनरावृत्त होती हैं। वर्ष यहोवा का प्रसन्नता का वर्ष है और वो हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन भी है।
वह दिन विपत्ति का दिन है, प्रतिफल का दिन और प्रतिशोध का दिन, जैसा कि मूसा के द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
पलटा लेना और प्रतिफल देना मेरा ही कार्य है। नियत समय पर उनका पांव फिसलेगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो बातें उन पर आने वाली है वे शीघ्रता कर रही है। व्यवस्था विवरण 32:33।
यशायाह में ये अनुग्रह का वर्ष और पलटा लेने का दिन है, और पलटा लेने का दिन मूसा का विपत्ति का दिन है, जहां लौदीकिया का पांव फिसल जाता है जब वे प्रतिफल और प्रतिशोध प्राप्त करते हैं। बड़े भूकंप का घंटा, विपत्ति का दिन, अनुग्रह का वर्ष और पहला महीना, ये सब रविवार विधि के साथ एक ही समय पर ठहरते हैं। योएल में महीना शब्द जोड़ा हुआ शब्द है, परंतु ये जोड़ा हुआ शब्द सही है। अनुवादकों ने महीना शब्द इस सत्य के अनुरूप जोड़ा कि पिछली वर्षा पहले महीने में आई थी।
तब हे सियोन की संतानों, आनंदित हो और अपने परमेश्वर यहोवा में मगन रहो, क्योंकि उसने तुम्हें उचित परिमाण में पहली वर्षा दी है और वो तुम्हारे लिए वर्षा बरसाएगा। पहली वर्षा और पिछली वर्षा पहले महीने में, योएल 2:23।
मंथ शब्द एक व्याख्या है, मूल प्रेरित पाठ का भाग नहीं। इब्रानी में केवल इतना कहा गया है कि वर्षा पहले में या जैसा पहले था आएगी, अर्थात परमेश्वर वर्षा को उसके उचित समय में पुनः स्थापित करेगा, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन समयों में होता था। सिस्टर व्हाइट बार बार 1840 से 1844 के मिलरवादी आंदोलन को पिंतेकुस्त के साथ संगत ठहराती हैं, ताकि अंतिम दिनों की पिछली वर्षा का वर्णन किया जा सके। पिछली वर्षा जैसा पहले था आती है, और वो पिंतेकुस्त था जिसे सिस्टर व्हाइट बार बार रविवार विधि के साथ संगत ठहराती है।
जो स्वर्गदूत तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की घोषणा में सम्मिलित होता है, उसे अपनी महिमा से सारी पृथ्वी को आलोकित करना है। यहाँ एक ऐसे कार्य की भविष्यवाणी की गई है जिसका विस्तार विश्वव्यापी होगा और जिसकी सामर्थ्य असाधारण होगी। 1840-44 का आगमन आंदोलन परमेश्वर की सामर्थ्य का एक महिमामय प्रकटीकरण था। पहले स्वर्गदूत का संदेश संसार के प्रत्येक मिशन केंद्र तक पहुंचाया गया और कुछ देशों में ऐसा महानतम धार्मिक जागरण देखा गया जैसा 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार के बाद से किसी भी देश में कभी नहीं देखा गया था। परंतु तीसरे स्वर्गदूत की अंतिम चेतावनी के अधीन होने वाला महान आंदोलन इन सबसे भी बढ़कर होगा। यह कार्य पिंतेकुस्त के दिन के कार्य के समान होगा, जैसी सुसमाचार के उद्घाटन के समय पवित्र आत्मा के उंडेले जाने में पहली वर्षा इसलिए दी गई थी कि बहुमूल्य बीज अंकुरित हो उठे, वैसे ही उसके समापन पर पिछली वर्षा फसल के पकने के लिए दी जाएगी। तब हम जानेंगे, यदि हम यहोवा को जानने में लगे रहें, उसका प्रकट होना भोर के समान निश्चित है, और वो हमारे पास वर्षा के समान आएगा, पृथ्वी पर पड़ने वाली पिछली और पहली वर्षा के समान। होशे 6:30। तब हे सियोन की संतानों, मगन हो और अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित हो, क्योंकि उसने तुम्हें पहली वर्षा उचित परिमाण में दी है, और वो तुम्हारे लिए वर्षा बरसाएगा, अर्थात पहली वर्षा और पिछली वर्षा। योएल 2:30। अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 2:17-21। सुसमाचार का महान कार्य परमेश्वर की सामर्थ्य की उससे कम अभिव्यक्ति के साथ समाप्त नहीं होना है जिसने उसके आरंभ को चिन्हित किया था। वे भविष्यवाणियां जो सुसमाचार के आरंभ में पहली वर्षा के उंडेले जाने में पूरी हुई थीं, उसके समापन पर पिछली वर्षा में फिर से पूरी होने वाली हैं। यहाँ वे शीतलता के समय हैं जिनकी ओर प्रेरित पत्रस ने दृष्टि लगाई थी जब उसने कहा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु की उपस्थिति से शीतलता के समय आएं और वो यीशु को भेजे। प्रेरितों के काम 3:19-20। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 6:11।
पेंटिकोस्ट सुसमाचार कार्य का उद्घाटन अथवा आरंभ था, और अंत में होने वाली पिछली वर्षा उसका समापन है। पहला अंतिम का प्रतिनिधित्व करता है। पहला महीना रविवार विधि के समय पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की पहचान कराता है।
हम में से कोई भी कभी परमेश्वर की मुहर प्राप्त नहीं करेगा जबकि हमारे चरित्रों पर एक भी धब्बा या कलंक बना रहेगा। हमारे ही ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि हम अपने चरित्रों की त्रुटियों का निवारण करें, आत्मा के मंदिर को प्रत्येक अशुद्धता से शुद्ध करें। तब पिछली वर्षा हम पर वैसे ही गिरेगी जैसे प्रारंभिक वर्षा पिंतेकुस्त के दिन चेलों पर गिरी थी। हे भाइयों, तुम तैयारी के इस महान कार्य में क्या कर रहे हो? जो लोग संसार के साथ एक हो रहे हैं वे सांसारिक ढांचा ग्रहण कर रहे हैं और पशु की छाप के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो अपने ऊपर अविश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख अपने को दीन करते हैं और सत्य की आज्ञाकारिता के द्वारा अपनी आत्माओं को शुद्ध कर रहे हैं, वे स्वर्गीय ढांचा ग्रहण कर रहे हैं और अपने माथों पर परमेश्वर की मुहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आज्ञप्ति प्रकट की जाएगी और छाप अंकित कर दी जाएगी, तब उनका चरित्र अनंत काल तक शुद्ध और निष्कलंक बना रहेगा। टेस्टिमोनीज खंड 5:14-16।
पहला महीना रविवार का विधान है। बड़े भूकंप का घंटा रविवार का विधान है। विपत्ति, प्रतिफल और प्रतिशोध का दिन रविवार का विधान है, और अनुग्रह का वर्ष रविवार का विधान है। पहली हाय की भविष्यवाणी के 150 वर्ष रविवार के विधान पर समाप्त होते हैं, जहां 391 वर्ष और 15 दिन आरंभ होते हैं।
उस छठे स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी, ये कहते हुए कि उस महान नदी फरात के पास बंधे हुए 4 स्वर्गदूतों को खोल दे, और वे चारों स्वर्गदूत खोल दिए गए, जो एक घड़ी और एक दिन और एक महीने और एक वर्ष के लिए मनुष्यों के तिहाई भाग को मार डालने हेतु तैयार किए गए थे। प्रकाशित वाक्य 9:14-15।
महानद फरात में बंधे हुए 4 स्वर्गदूत रविवार व्यवस्था के समय छोड़े जाते हैं, दूसरे हाय के उस घड़ी, दिन, महीने और वर्ष के लिए जिसमें मनुष्यों के तीसरे भाग को मार डाला जाना है। वे भविष्यद्वाणी के अनुसार तैयार किए गए हैं। रविवार व्यवस्था के समय संयुक्त राज्य अमेरिका बाइबल की भविष्यद्वाणी के 6ठे राज्य के रूप में मार डाला जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका उस तिगुने संघ का एक तिहाई भाग है जो रविवार व्यवस्था के समय स्थापित किया जाता है। दूसरा हाय तीसरे हाय में पुनरावृत्त होता है, जैसे दूसरा स्वर्गदूत तीसरे स्वर्गदूत में पुनरावृत्त होता है।
वे चारों पवन 9:11 पर छोड़े गए, जो 144,000 पर मुहर लगाए जाने के आरंभ को चिह्नित करते हैं, और उसके तुरंत बाद रोक दिए गए। यशाया 61 में जिनका प्रतिनिधित्व किया गया है, जो विलाप करते हैं, जब उन्हें शांति दी जाती है तब उन्हें रविवार के विधान के समय शांतिदाता के पूर्ण उंडेलने के द्वारा शांति दी जाती है, जो महान भूकंप का घंटा भी है। जो ग्रहणीय वर्ष में विलाप करते हैं वही ठीक वही हैं जो यहेज़केल 9 में विलाप कर रहे हैं और जो परमेश्वर की मुहर प्राप्त करते हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई का आरंभ यशाया 61 का उद्धरण देकर किया और सिस्टर व्हाइट उनकी इस घोषणा को हमारे कार्य के साथ संरेखित करती हैं।
मसीह ने संसार के सम्मुख अपने मिशन की घोषणा तब की जब उन्होंने नासरत के आराधनालय में यशाया की भविष्यवाणी से ये पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि खेदित मन वालों को चंगा करूं, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि मिलने का प्रचार करूं, कुचले हुओं को स्वतंत्र करूं और प्रभु के प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करूं। उसके सम्मुख कैसा कार्य था, प्रभु के प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करना। ये अवधि युग पर युग को अपने भीतर समेटे हुए है, शताब्दी से शताब्दी तक विस्तृत है, जब तक कि अनुग्रह अवधि बनी रहे। परमेश्वर याचना और द्वार खटखटाने की ध्वनि सुनने की प्रतीक्षा कर रहा है, ये देखने के लिए देख रहा है कि मानव जाति उसके समीप आती है, जो अकेला हमारी सहायता कर सकता है। वो उनके पापों को क्षमा करने, उन्हें अपना मानकर ग्रहण करने के लिए लालायित है। जो कोई खेदित आत्मा उसके पास आती है वो उसे ग्रहण करेगा, क्योंकि इसी कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र का अभिषेक किया। परंतु मसीह ने यशायाह में अभिलिखित इस कथन को पूरा क्यों नहीं किया? उन्होंने इस उपवाक्य को क्यों छोड़ दिया और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन को? इस वाक्य का उत्तरार्ध उतना ही सत्य था जितना उसका पूर्वार्ध, और मसीह ने अपने मौन द्वारा अपने चुने हुए भविष्यद्वक्ता को दिए गए अपने ही वचनों के एक भाग को रोक रखने द्वारा उस सत्य का निषेध नहीं किया, परंतु ये अंतिम उपवाक्य वही था जिस पर उनके श्रोता मनन करना प्रिय समझते थे और जिसे वे व्यवहार में लाने की ओर प्रवृत्त थे, उन सब पर दंड विधान घोषित करते हुए जो उनके धार्मिक विश्वास के नहीं थे। लोगों को सत्य, धर्म और क्षमा के वचन देने के स्थान पर उन्होंने उन्हें ये शिक्षा दी थी कि परमेश्वर समस्त अन्य जातीय संसार से घृणा करता है। परमेश्वर के पितृसुलभ चरित्र को विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया था और मानवीय परंपराओं के नीचे दबा दिया गया था। साइंस ऑफ द टाइम्स, January 14, 1897। इस युग में परमेश्वर की प्रजा के मिशन का निरूपण प्रेरणा के उन वचनों में किया गया है जो मसीह के कार्य का वर्णन करते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं दीन लोगों को शुभ समाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि खेदित मन वालों को चंगा करूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और जो बंधे हुए हैं उनके लिए कारागार के खुलने का प्रचार करूं, यहोवा के प्रसन्नता के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन का प्रचार करूं, सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन में विलाप करने वालों के लिए ये ठहराऊं कि उन्हें राख के बदले शोभा, विलाप के बदले आनंद का तेल और उदासी की आत्मा के बदले स्तुति का वस्त्र दिया जाए, ताकि वे धर्म के बांज वृक्ष कहलाएं, यहोवा के रोपे हुए जिससे वो महिमा पाए।
और वे प्राचीन उजड़े स्थानों को फिर से बसाएंगे, वे पहले की उजाड़ियों को पुनः खड़ा करेंगे और वे उजड़े हुए नगरों का जीर्णोद्धार करेंगे जो अनेक पीढ़ियों से उजाड़ पड़े हैं। लेक यूनियन हेरल्ड, November 11, 1908।
इससे पहले कि हम तीसरे हाई में दूसरी हाई की पुनरावृत्ति में और आगे बढ़ें, हमें अपने आप को ये स्मरण दिला लेना चाहिए कि इस संदेश को पंक्ति पर पंक्ति लाकर समझा जाना है। ये संकेत करता है कि प्रेरित वचन में उल्लिखित प्रत्येक घड़ी, दिन, महीना और वर्ष जो रविवार की व्यवस्था के संदर्भ में उपयुक्त बैठता है, उसे रविवार की व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए इस्लाम की तैयारी पर भी लागू किया जाना है।
उदाहरणार्थ, घड़ी शब्द पुराना नियम की केवल एक ही पुस्तक में पाया जाता है और वो पुस्तक दानियेल की पुस्तक है। दानियेल की पुस्तक में घड़ी का उल्लेख 5 बार किया गया है।
और जो कोई गिरकर दंडवत न करे और आराधना न करे, वो उसी घड़ी जलती हुई आग की भट्ठी के बीच में डाल दिया जाएगा। अब यदि तुम तैयार हो कि जिस समय तुम नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सकबुत, सारंगी और मधुर वाद्य तथा सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो गिरकर उस प्रतिमा की आराधना करो जिसे मैंने बनवाया है, तो अच्छा है। परंतु यदि तुम आराधना न करो, तो
तो उसी घड़ी जलती हुई आग की भट्ठी के बीच में डाल दिए जाओगे, और वो कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा। दानियेल 3:6-15।
बहन वाइट बार बार दानियेल अध्याय 3 और इसलिए उसी घड़ी को रविवार व्यवस्था पर लागू करती हैं। दानियेल अध्याय 4 में दानियेल एक घड़ी तक विस्मित रहता है जब वो नबूकदनेस्सर पर आने वाले न्याय को समझाने के लिए संघर्ष करता है।
तब दानियेल,
जिसका नाम बेलतेश जज्जर था, एक घड़ी भर तक स्तब्ध रह गया और उसके विचार उसे व्याकुल करने लगे। राजा ने कहा, हे बेलतेश जज्जर, न तो स्वप्न तुझे व्याकुल करे और न उसका अर्थ। बेलतेश जज्जर ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर घटे और उसका अर्थ तेरे शत्रुओं पर। दानियेल 4:19।
दानियेल एक घंटे तक विस्मित रहता है क्योंकि वो ये समझने का प्रयत्न करता है कि आने वाले न्याय के विषय में नबूकदनेस्सर को कैसे सूचित करे।
दानियेल प्रथम स्वर्गदूत के उस दूत का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो ये घोषणा करता है कि न्याय की घड़ी आ पहुंची है। उसकी भविष्यवाणी नबूकदनेस्सर को दी जाती है और एक वर्ष बाद बाबुल पर जो न्याय आना था वो नबूकदनेस्सर पर ले आया जाता है।
उसी घड़ी नबूकदनेस्सर पर वो बात पूरी हुई और वो मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया और बैलों के समान घास खाने लगा और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगता रहा, जब तक कि उसके बाल उकाबों के पंखों के समान और उसके नाखून पक्षियों के पंजों के समान न हो गए। दानियेल 4:33।
दानियेल निकट आने वाले रविवार विधि की भविष्यवाणी कर रहा है और जब वो आ पहुंचेगी तब वो बाबुल पर न्याय का घंटा होगा। दोनों घंटे रविवार विधि की पहचान करा रहे हैं जो उस बड़े भूकंप का घंटा है। नबूकदनेस्सर बाबुल की कथा का अल्फा है और बेलशस्सर उसका ओमेगा है, और जिस रात हाथ की लिखावट दीवार पर प्रकट हुई उसी रात बेलशस्सर मार डाला गया।
उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की उंगलियां प्रकट हुईं और राजा के महल की दीवार के पलस्तर पर दीवट के सामने लिखने लगीं, और राजा ने उस हाथ का वो भाग देखा जो लिख रहा था। दानियेल 5:5।
जिस उसी घड़ी दीवार पर लेख प्रकट हुआ वो उस समय की पहचान कराती है जब लिखित रविवार व्यवस्था, रविवार व्यवस्था के समय कलीसिया और राज्य के पृथककरण की दीवार को नष्ट कर देती है, और तब बाबुल का अंत हो गया, जैसा कि बाइबल की भविष्यद्वाणी के छठे राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का भी होता है। छठे राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका वही सामर्थ्य है जो यशाया 23 में प्रतीकात्मक 70 वर्षों तक राज्य करता है, जब सोर की वेश्या भुला दी जाती है। जिस राज्य या राजा की ओर यशाया संकेत करता है वे 70 वर्षों के दिन हैं, और वो राज्य जिसने बाइबल की भविष्यद्वाणी में 70 वर्षों तक राज्य किया वो बाबुल था। बेलशज्जर के बाबुल का पतन संयुक्त राज्य अमेरिका के पतन का प्रतिरूप है। रविवार व्यवस्था के समय जहां दीवार पर लिखा हुआ लेख प्रकाशित वाक्य 13 में अजगर के समान बोलने के साथ मेल खाता है।
प्रकाशित वाक्य 18 में बाबुल पर न्याय पद 4 में रविवार के विधान से आरंभ होता है, जब दूसरी वाणी ये पहचान कराती है कि उसका न्याय एक ही घड़ी में और साथ ही एक ही दिन में आता है।
और मैंने स्वर्ग से एक और वाणी ये कहते सुनी, हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके पापों में सहभागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कुछ भी तुम पर न आए, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं और परमेश्वर ने उसके अधर्मों को स्मरण किया है। जैसा उसने तुम्हें प्रतिफल दिया है वैसा ही तुम भी उसे दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दूना दो। जिस कटोरे में उसने भर कर दिया है उसी में उसके लिए दूना भर दो। जितना उसने अपने आप को महिमा दी है और विलास में जीवन बिताया है उतनी ही उसे पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी होकर बैठी हूँ और विधवा नहीं हूँ और शोक को कभी न देखूंगी। इस कारण उसकी विपत्तियाँ एक ही दिन में आ पड़ेंगी, मृत्यु और विलाप और अकाल, और वो आग में पूरी रीति से जला दी जाएगी, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर जो उसका न्याय करता है सामर्थी है, और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और विलास में जीवन बिताया जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे। वे उसकी पीड़ा के भय से दूर खड़े होकर कहेंगे, हाय हाय, हे बड़े नगर बाबुल, हे सामर्थी नगर, क्योंकि एक ही घड़ी में तेरा दंड आ पहुंचा। प्रकाशित वाक्य 18:22-10।
स्पष्ट है कि बाबुल पर क्रमिक न्याय का आरंभ पद 4 के रविवार विधि के समय से होता है, जब परमेश्वर की दूसरी भेड़ें बाबुल में से बाहर बुला ली जाती हैं। यूहन्ना उसके न्याय के समय को दिन और घड़ी दोनों के रूप में निर्दिष्ट करता है, जिससे ये पुष्टि होती है कि समय के प्रतीकों को प्रतीकात्मक अर्थ में समझा जाना चाहिए।
फसह पहले महीने में मनाया जाना था और फसह क्रूस के अनुरूप है, जो आगे चलकर रविवार के विधान के अनुरूप है।
और यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का आदि ठहरे, यही तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना हो। इसराइल की सारी मंडली से कहो कि इस महीने के 10वें दिन वे अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य एक एक मेमना लें, अर्थात एक घराने के लिए एक मेमना, और यदि कोई घराना उस मेमने के लिए छोटा हो तो वो और उसका पड़ोसी जो उसके घर के निकट रहता हो प्राणियों की गिनती के अनुसार उसे लें। जितना प्रत्येक व्यक्ति खा सके उसके अनुसार तुम मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष हो, एक वर्ष का नर, उसे तुम भेड़ों में से या बकरियों में से लेना, और तुम उसे उसी महीने के 14वें दिन तक अलग रखो। तब इसराइल की मंडली की सारी सभा उसे संध्या के समय वध करे। निर्गमन 12 वष्ट छोड़।
फसह पिंतेकुस्ती ऋतु का आरंभ था और इसलिए वो पिंतेकुस्त का प्रतिरूप है, जो आगे चलकर संडे लॉ के साथ मेल खाता है। पवित्र तंबू को पहले महीने के पहले दिन खड़ा किया गया था, इस प्रकार वो संडे लॉ के समय विजयिनी कलीसिया के ध्वज के समान उठाए जाने का प्रतिरूप है। दूसरे हाय का घंटा, दिन, महीना और वर्ष संडे लॉ की पहचान कराते हैं, और पंक्ति पर पंक्ति समय की उन प्रत्येक अभिव्यक्तियों का संडे लॉ के साथ सामंजस्य होता है जब संदर्भ इसकी पुष्टि करता है। संडे लॉ पर पोपीय उत्पीड़न की दूसरी अवधि आरंभ होती है। पहली वो 1260 वर्ष की अवधि थी जिसने उस काल के शहीदों को पांचवी मुहर में कब तक के प्रश्न के साथ प्रभु की ओर पुकारने के लिए प्रेरित किया, जब तक कि पोपीय शक्ति का न्याय न किया जाए। दूसरे पोपीय रक्त स्नान में यीशु ने अपने लोगों को सूचित किया है कि उत्पीड़न के समय उन्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि वे क्या कहेंगे,
परंतु जब वे तुम्हें ले जाएं और पकड़वाएं तो पहले से चिंता न करना कि तुम क्या कहोगे, और न ही पहले से उसका विचार करना, परंतु जो कुछ उस घड़ी तुम्हें दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। मरकुस 13:11।
पहले हाय में मनुष्यों को 150 वर्षों तक यातना दी गई। वे वर्ष 27 जुलाई 1099 को आरंभ हुए और 27 जुलाई 1439 को समाप्त हुए, जब उन 4 स्वर्गदूतों ने उन 4 वायुओं को छोड़ दिया जो घड़ी, दिन, महीने और वर्ष के लिए इस हेतु तैयार की गई थीं कि वे मनुष्यों के तिहाई भाग को मार डालें। यातना की ये अवधि संयुक्त राज्य में पशु की मूरत स्थापित किए जाने की अवधि का प्रतिनिधित्व करती है। वो अवधि लैव्य व्यवस्था 23 में तुरहियों के पर्व से पिंतेकुस्त तक निरूपित 15 दिनों की है। पशु की मूरत के गठन की अवधि 9:11 से रविवार विधि तक है, परंतु आधी रात की पुकार के संदेश की उद्घोषणा की अवधि 9:11 से रविवार विधि तक पशु की मूरत के गठन का एक फ्रैक्टल है।
मुहरबंदी का आरंभ और अंत पशु की मूर्ति के गठन के भी अल्फा और ओमेगा हैं। एक वर्ग परमेश्वर की मुहर के लिए चरित्र का निर्माण कर रहा है, दूसरा पशु की मूर्ति का निर्माण कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वो अवधि विश्व की उसी अवधि के साथ संगत है जो रविवार के कानून से आरंभ होती है। महीना उस यातना का प्रतीक है जो मूर्ति की स्थापना के लिए बाध्य करती है। अतः प्रकाशित वाक्य 9 के पद 15 द्वारा निरूपित रविवार के कानून के समय का महीना संसार में पशु की मूर्ति की स्थापना के दौरान इस्लामी यातना का भी प्रतिनिधित्व करता है।
इस बात के अन्य भी भविष्यद्वाणी संबंधी अनुप्रयोग हैं कि दूसरी हाय की भविष्यद्वाणी तथा उसका घंटा, दिन, महीना और वर्ष किस प्रकार संडे लॉ तथा इस्लाम को संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रहार करने के लिए छोड़ दिए जाने का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु हमें अन्य बिंदुओं की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
हाल के समय में पिछले लगभग 6 महीनों के दौरान मैं इस बात पर बल देता आया हूं कि 3 हायों का इस्लाम भविष्यद्वक्ता की दृष्टि से 3 स्वर्गदूतों से जुड़ा हुआ है।
याकूब की अंतिम दिनों की उस भविष्यवाणी से, जिसमें यहूदा को उस दाखलता के रूप में बताया गया है जो गधे से बैंधी हुई है, लेकर मसीह द्वारा अपनी विजयी प्रवेश यात्रा से पूर्व गधे को खुलवाने तक और अन्य साक्ष्यों की रेखाओं तक, पहली और दूसरी हाय का इस्लाम उस भविष्यवाणी संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसने पहले और दूसरे स्वर्गदूत के संदेशों को सामर्थ्य प्रदान की, और तीसरी हाय का इस्लाम तीसरे स्वर्गदूत के भविष्यवाणी संदेश का प्रतिनिधित्व करता है।
हाल ही में एटी जोन्स द्वारा लिखित एक पुस्तक के एक अध्याय का उल्लेख किया गया था, और वो उसी तथ्य की पहचान करता है परंतु एक भिन्न दृष्टिकोण से। जोन्स प्रकाशित वाक्य के व्याकरण और संरचना का उपयोग ये दिखाने के लिए करता है कि अंतिम तीन हाय तुरहियों को तीन स्वर्गदूतों के संदेशों से पृथक करना असंभव है। वो इस बात पर बल देता है कि पहले स्वर्गदूत को दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता और तीसरे को भी उससे पूर्व के उन दोनों से पृथक नहीं किया जा सकता। जोन्स का ध्यान तीन स्वर्गदूतों पर केंद्रित है, और यद्यपि वो तीन स्वर्गदूतों के अविभाज्य संबंध के विषय में अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, तथापि वो उसी तर्क के द्वारा ये भी सिद्ध करता है कि प्रकाशित वाक्य 9 की तुरहियों को भी प्रकाशित वाक्य 14 के तीन स्वर्गदूतों से पृथक नहीं किया जा सकता। हम इस लेख का समापन जोन्स के अध्याय के साथ करेंगे।
अध्याय अग्जरा, तीसरे स्वर्गदूत का संदेश।
आज के लिए उस महत्वपूर्ण प्रश्न, हम क्या करें, का उत्तर 7 तुरहियों और आज की महान जातियों के स्थान के आधार पर निश्चय पूर्वक दिया जा सकता है, क्योंकि उत्तर परमेश्वर के वचन द्वारा ठीक इसी आधार पर दिया गया है। हमने देखा है कि 7 तुरहियों में से अंतिम तीन के साथ तीनों हाय अविभाज्य रूप से संबद्ध है। 7 तुरहियों के ठीक मध्य में चौथी तुरही की समाप्ति के बाद और पांचवी तुरही के आरंभ से पहले ये लिखा है, और मैंने देखा और एक स्वर्गदूत को आकाश के मध्य में उड़ते हुए सुना जो बड़े शब्द से कह रहा था, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के अन्य शब्दों के कारण जो अभी फूंकने को हैं। प्रकाशित वाक्य 8:13। यही कि तीन हाय 7 तुरहियों में से अंतिम तीन के साथ अविभाज्य रूप से संबंधित है, प्रत्येक के साथ एक, इस तथ्य से संदेहातीत सिद्ध होता है कि जब पांचवें स्वर्गदूत का तुरही फूकना समाप्त होता है तब लिखा है एक हाय बीत गई और देखो इसके बाद दो हाय और आने वाली हैं, प्रकाशित वाक्य 9:12। और जब छठी तुरही समाप्त होती है तब लिखा है दूसरी हाय बीत गई और देखो तीसरी हाय शीघ्र आती है और 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, प्रकाशित वाक्य 11:15। अब उस स्वर्गदूत के साथ जो तीन हायों के आने की घोषणा करता है और जो 7 तुरहियों में से अंतिम तीन के साथ अविच्छेद्य रूप से संबद्ध है, प्रकाशित वाक्य 14 का तीसरा स्वर्गदूत, कि ये भी सब प्रकार के संदेह से परे निश्चित रूप में देखा जा सके, आओ हम प्रकाशित वाक्य 14 के तीसरे स्वर्गदूत के संदेश से आरंभ करें और उसके प्रत्यक्ष संबंधों को उनके आरंभ तक पीछे की ओर अनुसरण करें। तीसरे स्वर्गदूत के विषय में अभिलेख में प्रथम शब्द ये हैं, और तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे पीछे हो लिया, प्रकाशित वाक्य 14:9। ये दर्शाता है कि उससे पहले कुछ जा चुके थे जिनका तीसरे स्वर्गदूत ने अनुसरण किया। अतः पूर्ववर्ती पद को लो और उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया। ये दिखाता है कि इससे पहले भी एक स्वर्गदूत आया है जिसके पीछे ये आता है और इसी कारण ये एक और ठहरता है। अब छठी आयत पर लौटिए, और मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा। ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि एक स्वर्गदूत पहले ही जा चुका है और इसी कारण ये, जब वो आकाश के मध्य में उड़ता है, एक और कहलाता है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और पीछे लौटकर देखने पर हम 10वें अध्याय के पहले पद तक किसी भी स्वर्गदूत को नहीं पाते, 7वीं तुरही के स्वर्गदूत को छोड़कर, और वहां हम पढ़ते हैं और मैंने एक और प्रबल स्वर्गदूत को देखा। ये अभिव्यक्ति जैसा पहले भी इस बात की पुष्टि करती है कि इससे पहले एक स्वर्गदूत है जिसके रहते जब ये प्रकट होता है तब उसके विषय में एक और कहकर बोला जाता है।
और भी पीछे अनुसरण करने पर हमें छठी और पांचवी तुरही के स्वर्गदूतों को छोड़कर कोई स्वर्गदूत नहीं मिलता, जब तक कि हम अध्याय 8 की अंतिम आयत तक नहीं पहुंचते, और वहां हम आदि स्वरूप तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं और मैंने देखा और एक स्वर्गदूत की वाणी सुनी, एक और स्वर्गदूत नहीं वरन मूल रूप से एक स्वर्गदूत।
इस प्रकार प्रकाशित वाक्य 8:13 से आरंभ होकर
दूसरा शब्द द्वारा परस्पर जुड़े हुए स्वर्गदूतों की एक अविच्छिन्न श्रृंखला है जो सीधे प्रकाशित वाक्य 14 के तृतीय स्वर्गदूत तक उसके संदेश सहित चली जाती है। इस प्रकार मैंने देखा और एक स्वर्गदूत की वाणी सुनी, प्रकाशित वाक्य 8:13, और मैंने एक और बलवंत स्वर्गदूत को देखा, प्रकाशित वाक्य 10:1, और मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा, प्रकाशित वाक्य 14:14 में, और उसके पीछे एक और स्वर्गदूत चला, पद 8, और तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे पीछे चला, पद 9। संभवतः निम्नलिखित सरल रेखाचित्र 7 तुरहियों में से अंतिम 3 की 3 विपत्तियों की घोषणा करने वाले स्वर्गदूत और प्रकाशित वाक्य 14 के तृतीय स्वर्गदूत के संदेश के बीच के संबंध को स्पष्ट करने में सहायता करेगा। पहली तुरही प्रकाशित वाक्य 8:7, दूसरी तुरही प्रकाश के वाक्य 8:8, तीसरी तुरही प्रकाशित वाक्य 8:10, चौथी तुरही प्रकाशित वाक्य 8:10-12, एक स्वर्गदूत, हाय हाय हाय, प्रकाशित वाक्य 8:10-13, पांचवी तुरही प्रकाशित वाक्य 9:1-2/1 हाय, छठी तुरही प्रकाशित वाक्य 9:13-11:13 तक दूसरा हाय, एक और बलवंत स्वर्गदूत, प्रकाशित वाक्य 10:1, सातवीं तुरही प्रकाशित वाक्य 11:13-19 तीसरा हाय, एक और स्वर्गदूत, प्रकाशित वाक्य 14:5, एक और उसके पीछे पीछे आया, प्रकाशित वाक्य 14:6, तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे पीछे आया, प्रकाशित वाक्य 14:49। इस सब का आशय अब उस बात पर विचार करने के द्वारा और अधिक पूर्णतः समझा जा सकता है कि तृतीय स्वर्गदूत का संदेश वास्तव में अपने आप में क्या है। अपनी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति में तृतीय स्वर्गदूत पद स्पष्ट रूप से 3 स्वर्गदूतों की एक श्रृंखला में तीसरे की ओर संकेत करता है। जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है, ये 3 स्वर्गदूतों की श्रृंखला, जिनमें से प्रत्येक एक संदेश लेकर आता है, प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय 6:12 पदों में पाई जाती है। इन 3 स्वर्गदूतों के संदेश परस्पर मिलते हुए तृतीय में जाकर पराकाष्ठा को पहुँचते हैं, और वो तब तक गूंजता रहना बंद नहीं करता जब तक पृथ्वी की फसल पक न जाए और प्रभु के आगमन पर उसके काटे जाने के लिए तैयार न हो जाए। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश स्वयं, जैसा कि वो तीसरे स्वर्गदूत के शब्दों में घोषित किया गया है, इस प्रकार है, और उनके पीछे पीछे तीसरा स्वर्गदूत आया और बड़े शब्द से कहने लगा, यदि कोई उस पशु और उसकी मूरत की उपासना करे और अपनी ललाट पर अथवा अपने हाथ पर उसका चिन्ह ले, तो वो भी परमेश्वर के क्रोध की उस दाख मधु में से पिएगा जो उसके रोष के कटोरे में बिना मिलावट उंडेली गई है, और वो पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक से पीड़ित किया जाएगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूरत की उपासना करते हैं और जो कोई उसके नाम का चिन्ह लेता है, उन्हें दिन रात चैन ना मिलेगा। यहाँ पवित्र लोगों का धैर्य है, ये वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। ये तृतीय स्वर्गदूत का संदेश है, जैसा वो अपने स्वरूप में अन्य 2 से पृथक दिखाई देता है, परंतु वास्तव में इसे पृथक नहीं माना जा सकता और न ही इसे इस प्रकार अलग खड़ा किया जा सकता है मानो वो अकेला ही संसार के लिए एक स्वतंत्र पृथक संदेश हो, क्योंकि उसके विषय में सबसे प्रथम शब्द ही ये हैं, द थर्ड एंजल फॉलोड देम। अतः स्वयं इस संदेश के आरंभिक शब्दों के द्वारा ही हमारा ध्यान केवल एक की ओर नहीं वरन उन 2 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जो इससे पहले थे, और जिस यूनानी शब्द का अनुवाद फॉलोड किया गया है उसका अर्थ न तो अलग अलग पीछे चलना है और न केवल पीछे चलना बल्कि साथ साथ अनुसरण करना है, जैसे सैनिक अपने कप्तान के पीछे चलते हैं या सेवक अपने स्वामी के। इसलिए किसी बात में किसी का अनुसरण करना, अपने आप को किसी के द्वारा ले चलने देना, जब ये वस्तुओं के विषय में कहा जाता है तब इसका अर्थ परिणाम स्वरूप पीछे आना होता है, अर्थात किसी ऐसी बात के परिणाम के रूप में अनुसरण करना जो पहले घट चुकी हो। इस प्रकार व्यक्तियों के संबंध में तृतीय स्वर्गदूत उन 2 के साथ अनुसरण करता है जो उससे पहले आ चुके हैं, और उसका संदेश एक वस्तु के रूप में उन बातों के परिणाम या फल स्वरूप पीछे आता है जो पहले हो चुकी हैं। परंतु दूसरे के विषय में भी ये लिखा है, और उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया। जैसे तीसरा स्वर्गदूत दूसरे के पीछे आता है, वैसे ही दूसरा स्वर्गदूत पहले के पीछे आता है, और पहले के विषय में ये लिखा है, और मैंने एक और स्वर्गदूत को उड़ते देखा, आदि। 3 की इस श्रृंखला में ये पहला है, उसके साथ एक और उसके पीछे आता है, और तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे आता है। उनके उदय के क्रम में उत्तराधिकार है, परंतु जब ये तीनों क्रमशः उदित हो चुके होते हैं तब वे एक होकर साथ साथ आगे बढ़ते हैं। पहला अपना संदेश घोषित करता है, दूसरा उसके पीछे आता है और पहले के साथ जुड़ जाता है, तीसरा उनके पीछे आता है और उनसे जुड़ जाता है, ताकि जब वे तीनों संयुक्त हो जाते हैं और अपनी एकीकृत सामर्थ्य में साथ साथ आगे बढ़ते हैं तब वे एक प्रबल त्रिविध ऊंचे स्वर वाला संदेश बन जाते हैं। तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को पूर्ण बनाने के लिए इन सबका होना आवश्यक है, और इन सबके दिए बिना तीसरे स्वर्गदूत का संदेश सत्य रीति से नहीं दिया जा सकता।
तो फिर इस त्रिविध संदेश के उसके भागों में क्या है? यहाँ पहला है, और मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के मध्य में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों को और हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था, और वो बड़े शब्द से कह रहा था, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए।
ये दूसरी है, और उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया जो कहता था, बाबुल गिर पड़ा वो बड़ा नगर, क्योंकि उसने अपनी व्यभिचार की क्रोधमय मदिरा सब जातियों को पिलाई है।
और यहाँ तीसरा है, और तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे पीछे ये कहते हुए आया कि यदि कोई उस पशु और उसकी मूरत की उपासना करे और अपनी ललाट पर या अपने हाथ पर उसकी छाप ले तो वो भी परमेश्वर के क्रोध की दाख मधु पिएगा जो उसके रोष के कटोरे में बिना मिलावट के उंडेली गई है, और वो पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक में पीड़ित किया जाएगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग ऊपर उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की उपासना करते हैं और जो कोई उसके नाम की छाप लेता है उन्हें दिन रात चैन न होगा। यहाँ पवित्र लोगों का धीरज है, यहाँ वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु के विश्वास को रखते हैं।
इन प्रत्येक संदेशों की शब्दावली पर एक दृष्टि डालने से यूनानी शब्द फॉलोड में निहित वो भाव प्रकट होगा जिसका अर्थ है परिणाम स्वरूप पीछे आना। पहला स्वर्गदूत सब प्राणियों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार धारण किए हुए है और सब पर ये पुकार करता है कि परमेश्वर का भय मानो, उसे महिमा दो और उसकी आराधना करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। इस संदेश का अस्वीकार ऐसी दशा उत्पन्न करता है जो ऐसे अस्वीकार के परिणाम स्वरूप उसके पश्चात आने वाले दूसरे स्वर्गदूत के वचनों में वर्णित की गई है, और प्रथम संदेश के अस्वीकार के कारण तथा उस अस्वीकार के परिणामों के कारण, जैसा कि दूसरे में घोषित किया गया है, एक ऐसी दशा उत्पन्न होती है जो आगे के परिणाम स्वरूप ये अपेक्षा करती है कि तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे आए और ऊंचे शब्द से उस भयंकर चेतावनी की घोषणा करे जो उन भीषण बुराइयों के विरुद्ध है जो प्रथम संदेश के अस्वीकार के द्विगुण परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है।
और ये कि तीसरे स्वर्गदूत का स्वर और कार्य पहले के साथ एक रूप हो जाते हैं उसकी अंतिम वाणी से स्पष्ट है। यहाँ वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि यही सदा से सनातन सुसमाचार के प्रचार का उद्देश्य रहा है। यही परमेश्वर का भय मानने और उसे महिमा देने का तथा उसकी उपासना करने का जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए सार तत्व है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन और यीशु पर विश्वास ही एकमात्र ऐसी बात है जो किसी भी प्राणी को उसके न्याय की उस घड़ी में स्थिर खड़ा रहने योग्य बना सकेगी जिसके विषय में पहला स्वर्गदूत घोषणा करता है कि आ पहुंची है।
तीसरे स्वर्गदूत के समापन वचनों के तुरंत पश्चात ये कहा गया है, मैंने स्वर्ग से एक शब्द ये कहते हुए सुना, लिख, धन्य है वे मरे हुए जो अब से प्रभु में मरते हैं, अर्थात इस समय से आगे। प्रकाशित वाक्य 14:13। और इसके तुरंत बाद ये वचन आते हैं, और मैंने दृष्टि की और क्या देखता हूँ कि एक श्वेत मेघ है और उस मेघ पर मनुष्य के पुत्र के सदृश कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट है और उसके हाथ में एक तीखा हसिया है। और एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकलकर उस मेघ पर बैठे हुए को बड़े शब्द से पुकार कर कहने लगा, अपना हसिया चला और कटनी कर, क्योंकि तेरे लिए कटनी करने का समय आ पहुँचा है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। अतः जो मेघ पर बैठा था उसने अपना हसिया पृथ्वी पर चला दिया और पृथ्वी की कटनी की गई। प्रकाशित वाक्य 14:16। और कटनी जगत का अंत है, मत्ती 13:39।
फिर तीसरा स्वर्गदूत विशेष रूप से समस्त लोगों को उस पशु और उसकी मूरत की उपासना के विरुद्ध चेतावनी देता है, चाहे वे जो कुछ भी हों,
और प्रकाशित वाक्य 19:11-21 से हम पाते हैं कि जब प्रभु आकाश के बादलों में आते हैं तब वो पशु और उसकी मूरत जीवित होते हैं और उसके आगमन के प्रताप से वे दोनों नष्ट कर दिए जाते हैं।
ये तथ्य दिखाते हैं कि तीसरे स्वर्गदूत का संदेश एक सामर्थी त्रिविध ऊंचे स्वर से घोषित किया जाने वाला संदेश है जो प्रभु के दूसरे आगमन से ठीक पहले हर राष्ट्र और कुल और भाषा और लोगों तक पहुंचता है और जो पृथ्वी की कटनी को पकाता है और प्रभु के लिए एक तैयार की हुई प्रजा को सिद्ध करता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश प्रभु के प्रथम आगमन के लिए मार्ग तैयार करता था और इस प्रकार ये संसार के लिए परमेश्वर का अंतिम समापनकारी संदेश है। और अब इस प्रकार ये समझ रखते हुए कि तीसरे स्वर्गदूत का संदेश अपने आप में क्या है, उस संदेश का आज की महान राष्ट्रों के साथ क्या संबंध है, ये तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समय पर विचार करने के द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। A.T. जोन्स, द ग्रेट नेशंस ऑफ टुडे, 114।